शक्ति का स्वरूप बताया गया है।
हरे
कृष्णा।
I should not have to say anything. Gaura Shakti. So this is very important.
गौर शक्ति ये बहुत महत्वपूर्ण है।
The next word is Swarupaya, under the personified.
अगला शब्द है स्वरूपाय, यानी स्वरूप।
So the deep meaning of these words we have to understand.
इनके हमें गहरे अर्थ को समझना होगा।
Gaura Shakti Swarupaya, that he manifested as the form, under the personified form of Gaura Shakti.
गौर शक्ति स्वरूप आया, इसका अर्थ है जो गौरांग महाप्रभु की शक्ति का स्वरूप है.
सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट.
ये पहला पॉइंट है.
द नेक्स्ट पॉइंट इज वी मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्फिडेंशियल आइडेंटिटी ऑफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर.
अगला हमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जो खुयतम उनका स्वरूप है उसको समझना चाहिए.
वन मोमेंट प्लीज. So the translation is, I offer my respectful obeisances unto Satchitananda Bhakti Vinod.
Iska anuvad is prakar se hai, main un Satchitananda Bhakti Vinod Thakur ko sadar naman karta hu.
Who is transcendental energy of Chaitanya Mahaprabhu.
Jo Gaurang Mahaprabhu ki shakti ka swarup hai.
He is a strict follower of the Goswamis.
Tatha Srila Rupa Goswami ke netritva gat.
Headed by Srila Rupa.
सभी गोस्वामियों के अनुयायी हैं.
सो ऑल ऑफ अस आफ्टर चैतन्य महाप्रभु कम्स षट गोस्वामी.
श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद षट गोस्वामी आते हैं.
एंड द चीफ ऑफ षट गोस्वामी एंड श्री रूप गोस्वामी.
और सभी छह गोस्वामियों में से प्रमुख उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो श्रील रूप गोस्वामी हैं.
Of course, Jiva Goswami was also very prominent.
Srila Jiva Goswami bhi bahut mukhya bhumika nibhate hain.
Even the non-devotee scholars acknowledge him as the greatest philosopher of Vedic or Indian philosophy and history of the world. Even the non-devotees acknowledge this.
Yahan tak ki aise pandit jo bhakt nahi hain, wo bhi unko iski Srila Jiva Goswami को उनकी संस्कृत व्याख्या को पहचान करते हैं.
जीव गोस्वामी, some of you know, was much much younger.
शिला जीव गोस्वामी जो उम्र में छोटे थे, सबसे छोटे थे इन छह गोस्वामियों में से.
He was a mere boy.
वो एक बालक ही थे.
In comparison to Sat Goswami.
बाकी गोस्वामियों की तुलना में.
Of course he grew up.
निश्चित रूप से वो बड़े हुए.
But he was very very young when he went to Vrindavan to join the other Goswamis. Still he was quite young.
बाकी पांच गोस्वामी, बाकी जो गोस्वामी का समूह है उनको शामिल होने के लिए बहुत ही कम उम्र में वो वृंदावन गए.
The point I'm making is that Srila Goswami was considered the head and chief disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
तो मैं यहाँ ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि श्रील रूप गोस्वामी सभी गोस्वामियों के नेतृत्व करते थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे.
So therefore, even Jiva Goswami was such a great scholar, renowned throughout all of India.
तो जो श्रील जीव गोस्वामी जो इतने महान पांडित्य के लिए जाने जाते पूरे भारत वर्ष में.
But nevertheless, he deferred to Srila Rupa Goswami. Deferred, you tell him, you know the meaning, deferred.
फिर भी वो Srila Rupa Goswami के अनुगत थे.
So therefore, we are known as Rupanugas. We are following under the lotus feet of Sat Goswami through Srila Prabhupada and his representatives.
इसलिए हम रूपानुगा कहलाते हैं. हम Srila Rupa Goswami के द्वारा दिखाए हुए पथ का अनुगमन कर रहे हैं Srila Prabhupada की शरण में.
Srila Bhakti Vinod Thakur is a Nitya Siddha or eternally liberated devotee.
Srila Bhakti Vinod Thakur Nitya Siddha Bhakt hai.
And that means that he descended from the spiritual world.
Iska arth ye hua hai ki unhone adhyatmik jagat se avtarit hue the.
His eternal identity is a manjari.
Unka jo shashwat swarup hai wo ek manjari ke manjari ka hai.
They are the intimate confidential maid servants of Radhika.
जो मंजरी है वो बहुत ही कुए पार्षद होती हैं श्रीमती राधा रानी के.
They never grow older than 12 or 13 years.
वो 12-13 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं बढ़ते.
At least in the spiritual world.
आध्यात्मिक जगत में.
Of course, in the material world, they descended with costumes.
और भौतिक जगत में वो एक एक कॉस्ट्यूम धारण करके अवतरित होते हैं.
ब्रह्मचारी जो वेयरिंग सैफ्रन क्लॉथ.
जैसे कि ब्रह्मचारी जो सैफ्रन गेहुआ वस्त्र पहने हुए हैं.
दे वेयर अ सर्टेन टाइप ऑफ ड्रेस.
तो जो मंजरी भी होती हैं, जो इस जगत में आती हैं, एक प्रकार के वस्त्र धारण करके आते हैं.
Householders are supposed to dress in dhoti kurta and Vaishnav tilak.
जैसे कि गृहस्थ भक्त हैं, उन्हें धोती कुर्ता और वैष्णव तिलक, ये उनकी वेशभूषा है, वैष्णव वेशभूषा.
Different kinds of dress.
अलग अलग प्रकार के वेशभूषा हैं.
A king dresses in a different way from ordinary people.
जो एक राजा की वेशभूषा है, उस आम जनता की वेशभूषा से भिन्न है.
So in that sense, you can call it a costume.
तो इसलिए हम तुम वेशभूषा कह सकते हैं.
So when these Nityasiddha devotees descend to the material world, they assume varieties of costumes.
तो जब ये नित्यसिद्ध भक्त भौतिक जगत में अवतरीण होते हैं, तो अलग अलग प्रकार की वेशभूषा को धारण करते हैं.
But the predominance of acharyas in our line are manjaris.
अधिकतर आचार्य जो हमारी परंपरा में हुए हैं, उनका जो शाश्वत स्वरूप है वो एक मंजरी का है.
We sing that song, Shri Rupa Manjari Pada.
हम ये भजन भी गाते हैं,
श्री रूप
मंजरी पदा.
श्री रूप गोस्वामी ही इज मंजरी.
श्री रूप गोस्वामी भी मंजरी है.
सनातन गोस्वामी आल्सो मंजरी.
श्री सनातन गोस्वामी का शाश्वत जो स्वरूप है वो भी मंजरी का है.
सो श्री भक्ति विनोद ठाकुर इज आल्सो मंजरी.
श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी मंजरी है.
And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he is also Manjari.
Shila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, wo bhi Manjari hai.
As well as Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and that group, that sangha of Siksha God brothers.
To jo Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, Shyamanand Prabhu, ye sab Manjari hai.
They were Siksha God brothers as students under the lotus feet of Shri Jiva Goswami.
ये तीनों शिक्षा गुरु भाई थे जो शिला रूप शिला जीव गोस्वामी के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे
हैं. Try to understand Vaishnav etiquette here. Try to understand.
तो यहाँ पर आप वैष्णव सदाचार को समझने का प्रयास कीजिए.
Because Shri Jiva Goswami was the greatest scholar of the time.
क्योंकि उस समय शिला जीव गोस्वामी अपने समय के सबसे महान पंडित थे.
Their Diksha Gurus, Narottam Das Thakur, Srinivasacharya, and their group in general, they were sent by their Diksha Guru to study under the lotus feet of Srila Jiva Goswami.
The Srila Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamanand Prabhu, inke Diksha Guru ke dwara, inko bheja gaya tha Srila Jiva Goswami ke sharan mein adhyatmik shiksha grahan karne ke liye.
Still at the head is Srila Rupa Goswami.
Phir bhi, jo in sabhi ke netritv kar rahe hain, wo Srila Rupa Goswami hain.
In the spiritual world also, Srila Rupa Goswami and Sanatana, they are manjaris, thus they are very, very prominent of the closest associates of Radhika.
And in the spiritual jagat mein bhi Srila Rupa Goswami and Sri Sanatan Goswami, jo manjari swarup hain, sabse pramukh bhumika nibhati hain, jo sabse antarang hain Srimati Radhika ke.
So with this background we understand the confidential identity of Srila Bhaktivinoda Thakur.
तो इस प्रकार से हम Srila Bhaktivinoda Thakur के जो उनका सबसे गुह्य स्वरूप है उसको समझते हैं.
These manjaris have simply assumed different costumes to become preachers in this material world.
ये जो मंजरी जब अवतरित होती है अलग अलग प्रकार की वेशभूषा ग्रहण करती है इस संसार में प्रचार कार्य को करने के लिए.
Strain yourself to understand the concept.
इस सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास कीजिए.
Nowadays, even ISKCON is becoming very concerned about the position of women.
आजकल आज के समय में ISKCON भी बहुत चिंतित है जो एक स्त्री की क्या भूमिका है उसके विषय में.
In the West, it's something you would certainly run into in the universities, but I don't know about India yet. Maybe it's just not coming in India.
मुझे भारत का पता नहीं परंतु पाश्चात्य देशों में खासकर महाविद्यालयों में एक चीज देखने को मिले जो धीरे धीरे भारत में भी आएगी ही आएगी.
If in your university preaching you happen to run across somebody who asks in a challenging way, what is the position of women in your Hare Krishna movement?
अगर आप किसी महाविद्यालय में प्रचार कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपसे टकरा गया और आपसे बहुत चुनौतीपूर्ण ये प्रश्न पूछ रहा है कि ISKCON संस्था में एक महिला का क्या भूमिका है, क्या रोल है,
they expect you to say that they're slaves or something.
वो अपेक्षा करते हैं कि आप उन्हें ऐसा उत्तर देंगे कि वो बहुत बिल्कुल दासी की तरह रहती हैं.
Krishna say, oh, they are eternally liberated souls. The chief amongst the highest ladies in our sampradaya, they're eternally liberated souls.
तो आप उत्तर दे सकते हैं हमारे संप्रदाय में जो सबसे प्रमुख नेतृत्व कर रहे हैं वो एक उनका जो शाश्वत पहचान है वो एक स्त्री की है.
And they descend into this material world as the greatest of saints.
वो नित्य सिद्ध हैं और इस संसार में अवतरित होती हैं एक महान संत के रूप में.
That point they have nothing further to say.
इस उत्तर के बाद उनके पास कुछ पूछने के लिए नहीं रह जाएगा.
According to their script, that wasn't what you were supposed to say. According to your script, you were supposed to say something full of what's called male chauvinism. You know what that means? Male chauvinism means male false ego, pride and lording over, etc.
तो वो बिल्कुल अलग उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं आपसे. परंतु जब आप इस प्रकार का उत्तर देंगे तो उनका जितना भी झूठा अहंकार घमंड है.
Instead, we say that the ladies descend. The Vaishnavis, the greatest saints descend in this material world, and they have become the greatest saints in the history of our Hare Krishna movement. You tell them that, at that point, they don't know what to say, because that's not what you were supposed to say in their book.
तो जब आप उत्तर देंगे कि जो वैष्णवीज हैं, वो अवतरित होती हैं इस संसार में प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए.
This is the confidential identity of Tucker Bhaktivinoda.
तो यही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की गुह्यतम जो उनका स्वरूप है वो है.
So he appeared in India in the 19th century.
तो 19वीं सदी में वो भारत में उनका जन्म हुआ.
1800s, we will come to his specific birth date. So
18th.
He appeared at a time when the ruined British, the Indian intellectuals and the common people of the 1800s were having what Prabhupada called hodgepodge, kitchery philosophy.
तो जब जिन परिस्थितियों में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का यहाँ पर जन्म हुआ उस समय भारत में सिद्धांतों के बहुत अनेक अनेक प्रकार के सिद्धांत प्रचलित थे और पूरी की पूरी खिचड़ी बनी हुई थी.
British scholars were predominating all over India.
और उस समय जो Britishers scholars हैं पर वहाँ Britishers उनका बोल चाल था.
Believe it or not, at that time in the 1800s, at the time of the appearance of Srila Bhaktivinoda Thakur, Calcutta was the intellectual headquarters of the world. Hard to imagine now. I mean, it was really run down, but now the IT world has come to Calcutta and the high rise buildings and all that. Still, so for modern India, it's hard to imagine Calcutta as the intellectual capital of India, but it was in the 1800s. It was.
तो जिस समय श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ उस समय जो कलकत्ता शहर है वो बुद्धिमता के मामले में राजधानी माना जाता था पूरे देश का.
So what did these intellectuals do?
तो उस समय ये सब जो लोग बुद्धिमान थे ये क्या करते थे जो पंडित थे.
Taking the British conception as all in all, they piled abuse on the Vedic thought and scripture and poorly conceived ideas and information, speculations, nasty speculations about Vaishnavism.
तो उस समय जो ब्रिटिशर्स का मत था वैदिक साहित्यों को लेकर तो जो भारतीय पंडित भी तो उसी को स्वीकार कर रहे थे और वैष्णव धर्म की बहुत निंदा करते थे.
So 1838 was the year of Tucker Bhaktivinoda's appearance in this world.
1838 इस वर्ष में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अवतरित हुए.
एंड that same year there was a debate in India's Supreme Ruling Council.
और उसी साल में जो ब्रिटिशर्स थे उनको सुप्रीम काउंसिल उनका निर्माण किया गया.
There was a debate about the value of teaching Sanskrit.
जिसके अंतर्गत वो संस्कृत सिखाते थे.
So that would include all the classical literatures of India. Sanskrit.
तो जितने भी वैदिक साहित्य हैं ये संस्कृत ये ब्रिटिशर्स सिखाते थे.
Whether or not Sanskrit should be allowed to be taught in the schools.
संस्कृत को स्कूल में नहीं सिखाया जाता था. कि स्कूल में ना सिखाया जाए इसलिए ये चुनाव हुआ.
Only a few members of the council were in favor of allowing Sanskrit teaching to go on.
तो उस काउंसिल के सिर्फ कुछ ही सदस्य इस मत में थे कि संस्कृत को पढ़ाया जाए स्कूलों में.
But the infamous Thomas Macaulay prevailed.
परंतु जो कलयुग का प्रभाव है उसके कारण.
And the education, in an education magazine, Macaulay wrote.
तो उस समय जो मैकॉली थे तो उन्होंने एजुकेशन मैगजीन में लिखा.
That he could not find one Orientalist. Orientalist means of Asia, scholars of Asia.
तो उन्होंने लिखा मैं जो एशिया में एक भी ऐसे पंडित को नहीं जानता.
This is his quote.
ये उनका द्वारा दी गई स्टेटमेंट है.
Who could deny that a single share of the good European library was worth the whole native literature of India and Arabia?
American English is better, man.
You have to translate my British English. He said, who could deny that, meaning scholars of India, who could deny that a single shelf of a good European library was worth a whole native literature of India and Arabia? In other words, one shelf of British books was worth more than all the most prominent books of India and Arabia.
तो उनके द्वारा ये वाक्य दिया गया कि जो ब्रिटिशर्स की लाइब्रेरी का एक शेल्फ भी है उसकी कीमत ज्यादा होगी कि पूरे के पूरे जो इंडो अरेबिक जितने भी साहित्य को मिला दें उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी शेल्फ पर रखी एक किताब ब्रिटिशर्स की.
He went on to say that all the information collected from the books in the Sanskrit language is less valuable than what may be found in the most paltry or small abridgments used in a grammar school in England.
तो उन्होंने कहा कि सारे के सारे संस्कृत साहित्यों के द्वारा प्राप्त की गई सूचना का इसका महत्व बहुत कम है इसकी तुलना में कि जो इंग्लैंड में छोटे बच्चों को जो इंग्लिश किताब पढ़ाई जाती है उसकी तुलना में.
So he said there are no books. Should we allow them to teach a language where there are no books with any subject deserves to be compared to our own?
तो उन्होंने कहा कोई भी ऐसा विषय की योग्यता नहीं है कि उनको विश्वविद्यालय स्कूलों में पढ़ाया जाए जितना कि हमारा खुद का विषय महत्वपूर्ण है.
Should we allow them to teach medical doctrines which would disgrace an English doctor?
तो हमें सबसे पहले अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए और जो मेडिकल डॉक्टर्स ये सब जो विषय हैं ये लोगों को पढ़ाना चाहिए.
Astronomy which would move laughter in girls at an English boarding school.
और जो एस्ट्रोनॉमी है उसका तो बहुत ही हास्यप्रद स्थिति है हमारे स्कूलों में.
That was Jyotirveda is Jyotirveda, the astronomical astronomy shastra from Vedas would only make English schoolgirls laugh. That in other words, because we're talking about upside down Mount Sumeru and all these other things of fifth canto which even some devotees can't swallow it. Just speak of
खासकर जैसे ज्योतिर्वेद में लिखी गई जो भी सूचना है सुमेरु पर्वत इत्यादि इन सब को पढ़कर स्कूल में हमारे बच्चों को हंसी आती है. जैसा कि पांचवें स्कंद में भी अलग अलग प्रकार की सूचना दी गई है जो कि कभी कभी भक्त भी इसको बचा नहीं पाते.
Then he says, and history books describing kings 30 feet high.
और खासकर जो इतिहास की पुस्तकें हैं जो 30 में 30 फीट ऊपर व्यक्ति उसकी जो
हाइट. They don't know anything about Satya Yuga, Treta Yuga. They don't know. They did not know.
तो उनको सत्ययुग त्रेतयुग त्रेतायुग के बारे में तो कुछ ज्ञान नहीं था.
Who reigned for 30,000 years? They got this information. They knew that's what it says in the Bhagavad. You see, this is what Bhaktivinoda Thakur was up against.
तो हालांकि वह इस पर विश्वास नहीं करते थे परंतु इनको ये सूचना प्राप्त थी.
And geography made up of seas, of rivers, of butter, ghee ocean. Fifth canto. Somebody read the fifth canto of the Bhagavad. Pass that information on.
और खासकर ज्योग्राफी विषय में जहां पर उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बीजों की नदी बह रही है, मक्खन की नदी है, तो इस पे तो उन्हें बहुत ही हंसी आती थी. परंतु उनमें से किसी न किसी ने पांचवा स्कंद पढ़ रखा था.
There's all kinds of oceans. They're described in the fifth canto.
तो ऐसे अलग अलग प्रकार के महासागर की जो सूचना है हमें पांचवें स्कंद में प्राप्त होती है.
So somebody read the fifth canto and passed that on to the British Ministry of Education.
तो किसी ने पांचवें स्कंद को पढ़कर जो ब्रिटिशर्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उनको आगे दिया.
So he ended by saying the great object of British government ought to be to promote the European literature and science among the natives of India. You guys.
So
you people. Oh, you poor ignorant fools. You really must learn the British conception for God's sake.
तो उन्होंने इस प्रकार से उसका जो सार है प्रस्तुत किया कि जो ब्रिटिशर्स के लिटरेचर्स हैं, साहित्य हैं, खासकर अंग्रेजी भाषा में और अन्य विषयों में, उसको पढ़ाया जाए भारतीय विद्यालयों में. तो ये आप सब लोगों की बात हो रही है, आप सबको ये सब विषय पढ़ाया जाए.
This is a setting in which Srila Bhaktivinoda Thakur appeared.
तो ऐसे वातावरण में शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ.
Then the other obstacle was widespread sahajism.
और एक अन्य जो प्रमुख बाधा थी कि बड़े पैमाने पर सहजियापन फैला हुआ था.
And they all pretended to be followers of Mahaprabhu.
और सब अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी के रूप में घोषित करते थे.
So the rest of the scholars in India, this is what they heard. They heard Sahajas preaching so-called philosophy of Mahaprabhu, so therefore they rejected.
तो अन्य जितने इस देश के intellectual class अबुद्धिमता लोग हैं, उन्होंने इन सहजियों के मुंह से श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सुना था और इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया.
Some of these Sahajas were teaching the mundane sexual activity.
और इनमें से जितने साहित्या हैं बहुत ही जो भौतिक स्तर के यौन जीवन है इसको प्रकट करते थे.
Amongst its members was equal to the Rasalila of Radha and Krishna. They were saying, I mean, this is the philosophy that Bhaktivinoda Thakur was up against.
तो वो अपने ही जो उनके समाज के सदस्य होते थे उनमें जो आपस में संबंध बनते थे यौन जीवन के, उसको वो रासलीला से तुलना करके लोगों को बताते थे.
Then there was another group spreading bogus philosophy that printed books and distributed them widely in the villages.
उनमें से एक और सहजीय ग्रुप था जो बड़े पैमाने पर पुस्तकें छापकर गांव-गांव में बांट रहा था.
There were more than 50 Sahajya books that were published and widely distributed in all over Bengal, and so the whole conception of Vaishnavism became polluted. This is why Krishna sent down Mahaprabhu, sent Bhaktivinoda Thakur to rectify this specifically.
लगभग 50 ऐसे साहित्यों के लिटरेचर तक पुस्तकें थी जिसको छाप छाप कर बंगाल में बांटा जा रहा था और यही कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर को इस संसार में भेजा.
So he established Sajjana Toshini, a journal preaching pure Krishna consciousness.
तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने आके श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावना अमृत के शुद्ध सिद्धांत है उनको स्थापित किया, उनका प्रचार किया.
He was first to
सज्जन तोषणी के माध्यम से
the first to inaugurate Namahat preaching.
और उन्होंने ही नामहट प्रचार का शुरुआत की.
That means in modern times, obviously the first Namahat preacher was Nityananda Prabhu. But everything was lost, so the point that we're making here, everything was lost, Gaudiya Vaishnavism was lost.
तो उस समय के जो आज के समय की हम बात करें, क्योंकि सबसे पहले नामहट प्रचारक तो नित्यानंद प्रभु थे, परंतु उनके अप्रकट होने के बाद सारी चीजें लुप्त हो रही थी।
So everyone say along with me please.
हर कोई कृपया मेरे साथ कहें।
यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति पार्था अभ्युत्थानम् अधर्मस्य चराचरं सुजातम्। That's good for a warm up.
ये बहुत ही अच्छे रूप से आपने किया।
Say it again please.
दोबारा से कहिए।
यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानेर्भवति पार्था अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। Whenever and wherever there is a decline of religious activity,
जब-जब जहाँ-जहाँ धर्म की ग्लानी होती है,
and a predominant rise of irreligion,
और अधर्म बढ़ता है,
Krishna says,
भगवान
कृष्ण
कहते हैं,
I advent myself.
उस समय मैं अवतरीण होता हूँ.
But the fact is that sometimes Krishna doesn't come personally.
परंतु तथ्य ये है, कभी कभार भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते।
He doesn't have to.
उनको आने की आवश्यकता नहीं है।
He sends his empowered Shaktivesh avatars instead.
वो अपने सशक्त शक्तिवेश अवतार को भेजते हैं।
So, Srila Bhaktivinoda Thakur was dispatched by none other than Radhika herself.
तो Srila Bhaktivinoda Thakur श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही भेजे गए हैं।
हरे वाह,
हरे वाह।
If you look at the picture, so then it is a ladies' conspiracy, so to speak.
तो अगर आप पिक्चर देखें, जैसे मूवीज में देखते हैं, तो ये किसी स्त्री के द्वारा बनाया गया वो षड्यंत्र है।
We worship a god, goddess. We are goddess worshippers, you could tell. Those who think we don't honor women say we're goddess worshippers. We worship the supreme goddess. We accept the supreme goddess Radhika as God herself. We do.
तो हम स्त्री की पूजा करते हैं। तो जो हमारी आराध्य हैं, ईश्वरी हैं, वो श्रीमती राधा रानी हैं, जिनको हम भगवान के रूप में पूजते हैं।
And she descends as Chaitanya Mahaprabhu.
और वो अवतरित होती हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में।
Along with her eternal associates,
अपने नित्य संगियों के साथ।
So on the side of Mahaprabhu, the majority are manjaris.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, अधिकतर मंजरी हैं।
And on the side of Nityananda Prabhu, the majority are cowherd boys.
और नित्यानंद प्रभु के जितने पार्षद हैं, अधिकतर वो उनके सखा हैं।
There's one wonderful pastime in which Nityananda Prabhu challenges
एक ऐसी लीला है जिसमें नित्यानंद प्रभु चुनौती देते हैं।
He must have been talking to some of his friends.
तो वो अपने किसी मित्र से बात कर रहे होंगे।
If you're actually a coward boy, then you have to show how to throw a stick in the air.
तो अगर आप वास्तव में सखा हैं, बहुत सखा हैं, तो आपको प्रदर्शित करना होगा कि आप कैसे जो डंडी है हवा में उछालते हैं।
Arts of the Gaur boys, they can take their stick. The Gaur boys carry sticks like Lord Balaram carries a stick.
जो ग्वाल बाल हैं, उनको ये तकनीक आती है कि उनके पास जो एक छड़ी होती है, उसको कैसे हवा में उछालना है।
And the so this is the paraphernalia of cowherd boys.
तो जो ग्वाल बाल है, ये उनके साथ जो सामान होता है, उसमें से एक छड़ी भी है।
So Nityananda Prabhu challenged, if you're actually a cowherd boy, let's see how do you throw a stick.
तो एक बार नित्यानंद प्रभु ने चुनौती दी, अगर आप वास्तव में ग्वाल बाल हैं, तो देखते हैं आप छड़ी कैसे उछालते हैं।
So he demonstrated by throwing. Let's say they might throw it as high as the temple room ceiling.
तो उन्होंने इसको प्रदर्शित किया। लगभग इतना ये सीलिंग है, इतना ऊपर उन्होंने उछाला।
Twirling it around in fancy patterns, it's not just throwing it, but twirling it around in fancy patterns and catching it properly. That's cowherd.
और बिल्कुल घूम घूम के ऊपर गई, अलग अलग तरीके टेक्निक से उन्होंने उछाला और उसको वापस पकड़ा।
Well, that was demonstrated by the associates of Nityananda Prabhu.
तो नित्यानंद प्रभु के जितने संगी हैं, उन्होंने इसको प्रदर्शित किया।
So Srila Bhaktivinoda Thakur, Nityananda Prabhu, he started this door-to-door preaching in Bengal under the order of Mahaprabhu.
तो नित्यानंद प्रभु ने बंगाल में प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर किया।
श्री भक्तिविनोद ठाकुर followed in the footsteps of Nityananda Prabhu by organizing teams of door-to-door preachers.
तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने भी नित्यानंद प्रभु के द्वारा दिखाए गए पद का अनुगमन किया और वहां पर प्रचार को ऑर्गेनाइज किया नामहट प्रचार।
In the villages, because remember the Bengal.
अलग-अलग गांवों में।
In those days, Bengal was nothing but villages, you know.
क्योंकि उन दिनों में बंगाल में सिर्फ गांव ही थे।
Even Calcutta was two villages that merged together as the British developed it.
क्योंकि जो कलकत्ता है, जिसको हम देखते हैं, वो भी दो बड़े-बड़े गांव थे, जिसको मिलाकर ब्रिटिशर्स ने उसको डेवलप किया.
And he began publishing authentic Gaudiya Vaishnava philosophy.
और श्रीलाल भक्तिविनोद ठाकुर ने षट गोस्वामी के द्वारा दिए गए हुए गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को लिखकर उसका प्रकाशन किया.
And discovering places of pilgrimage, such as Mahaprabhu's birthplace.
और अलग-अलग तीर्थ स्थानों की उन्होंने खोज की, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान.
Instructing and educating many followers.
और अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको उन्होंने निर्देश दिए.
Including, of course, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
और श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी उन्होंने निर्देश दिए.
There was a scholar in the 1800s. He frankly admits that Vaishnava journalism, as well as Gaudiya Vaishnava organization in Bengal, really became meaningful under the guidance of a dynamic Vaishnava deputy magistrate named Kirat Datta.
उस समय 1800 के दशक में एक पंडित ने भी स्कॉलर ने भी इस बात को मान्यता दी कि पूरा का पूरा जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय है ये बहुत सार्थक हो गया श्रील भक्तिविनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त नाम से उनके नेतृत्व में.
तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिव्ड फ्रॉम 1838 टू
1914 1838 से 1914 तक उनका जीवन रहा.
Then he began studies of comparative philosophy.
उसके बाद उन्होंने अलग-अलग सिद्धांतों को अध्ययन करना प्रारंभ किया.
And when he was in charge of Jagannath Puri, he had this famous, you know, the word altercation with Vishakishan, who was tantric and who was claimed to be incarnation of Krishna.
जब श्रीला जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ मंदिर के नेतृत्व कर रहे थे उस कमिटी का तो उनका एक लड़ाई भी हुई बिशकिशन नामक तांत्रिक से.
He threw him in jail because the magistrate means the judge, and although he was in charge of the temple, he was also the supreme judge for Puri and Orissa.
तो उन्होंने क्योंकि उस समय वो मैजिस्ट्रेट थे और मंदिर के अध्यक्ष भी थे तो उन्होंने बिशकिशन को जो ढोंगी पाखंडी था उसको जेल में फेंक दिया.
So Dr. Bhaktivinoda Thakur, he started a society of devotees called Vaishnava Sabha.
तो उस समय उन्होंने वैष्णव सभा जो भक्तों का समाज था उसको प्रारंभ किया.
And he set up a printing press.
और वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की.
In Calcutta.
कलकत्ता में.
And so the Vaishnava Sabha appointed three Gaudiya Vaishnava preachers.
तो गौड़िया वैष्णव प्रचारक आगे निकल कर आए इस दृष्टि से.
One was Bipin Bihari Goswami.
उस समय विपिन बिहारी गोस्वामी थे.
महेंद्रनाथ गोस्वामी.
नानंद गोस्वामी.
And Hari Gopal Goswami.
और हरि गोपाल गोस्वामी.
They were supposed to spread pure Vaishnavism and all over Bengal.
तो उस समय उनका मिशन था शुद्ध वैष्णव सिद्धांतों को बंगाल में उसका प्रचार किया जाए.
Now we have to understand that Srila Bhaktivinoda Thakur was never an ordinary human being.
तो हमें ये समझना चाहिए कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कभी भी एक साधारण मनुष्य नहीं थे.
Srila Prabhupada was asked by a disciple about the identity of Srila Bhaktivinoda Thakur.
Srila Prabhupada se ye prashna pucha gaya tha unke ek shishya dwara ki Srila Bhaktivinoda Thakur ke swaroop ke bare mein.
There's a letter to a disciple named Madhusudan.
Madhusudan namak shishya ko unhone ek patra mein likha.
November 20th, 1968. So this is very early on. Very early in the history of the movement.
हमारे आंदोलन के शुरुआती दिनों में.
Regarding your questions,
जहां तक आपके प्रश्नों का,
had written that I read a book sent from India. A disciple had written, I read a book sent from India.
मैंने एक पुस्तक पढ़ी है जो भारत से भेजी गई थी.
The Srila Bhaktivinoda Thakur was sent directly by Lord Chaitanya.
कि इसमें लिखा है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए थे.
From the spiritual sky.
आध्यात्मिक जगत से.
I'm not sure if the book was bona fide, the disciple wrote.
मैं नहीं जानता कि कितना प्रमाणिक है.
Is it actually true?
क्या ये वास्तविक में सत्य है?
One of his god brothers, being my god brothers, mentioned he heard that Bhaktivinoda Thakur was a one-time and impersonalist.
किसी उनके गुरु भाई से उन्होंने सुना कि भक्ति विनोद ठाकुर एक किसी समय में मायावादी थे.
Was he ever?
क्या ये बात सच है?
Srila Prabhupada replied, yes, what you have heard is all right.
Srila Prabhupada ने कहा कि हाँ.
Just like Arjuna is the constant companion of Krishna.
कि जैसे पहले प्रश्न का उत्तर उनका ठीक कि जैसे अर्जुन भगवान के नित्य सखा है.
As confirmed in the fourth chapter of Bhagavad Gita.
जैसे इसकी पुष्टि भगवद गीता चौथे अध्याय में भी होती है.
Where Krishna says that both Arjuna and he appeared many times in this world.
भगवान कृष्ण कहते हैं कि वह और अर्जुन कई बार इस संसार में प्रकट हुए हैं.
This is Srila Prabhupada's letter continued.
तो श्रीला प्रभुपाद पत्र में आगे लिख रहे हैं.
What Arjuna had forgotten his past appearance.
जब अर्जुन अपने पूर्व जन्म के इतिहास को भूल गए थे.
And Krishna did not.
परंतु कृष्ण नहीं भूले थे.
Krishna is like the sun.
कृष्ण एक सूर्य के समान है.
And Maya just like darkness.
और माया अंधकार के समान.
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
When Krishna is present, there cannot be any darkness of Maya.
जब जहाँ पर कृष्ण उपस्थित है वहाँ पर माया का जो अंधकार है वो रह नहीं सकता.
So although Arjuna was always in the presence of Krishna,
हालांकि अर्जुन नहीं जानता था जब कृष्ण के साथ थे.
As an eternal companion in friendship.
परंतु वो भगवान कृष्ण के नित्य मित्र थे.
Still he had some illusion in the battle of Kurukshetra.
फिर भी वो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में किसी भ्रम में आ गए थे.
Of course the solution was Yogamaya and not Mahamaya like ours.
और निश्चित रूप से वो योग द्वारा आच्छादित थे, महामाया द्वारा नहीं.
Or the material energy. It was not covered by the material energy, it was covered by Yogamaya, the internal potency.
तो भगवान के अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित थे.
Although Arjuna was always in the presence of Krishna as an eternal companion in friendship.
हालांकि जो अर्जुन भगवान कृष्ण की उपस्थिति में थे उनके शाश्वत मित्र के रूप में.
Still he had some illusion in the battlefield of Kurukshetra.
फिर भी उनको कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में किसी भ्रम में आए.
And Krishna had to dissipate that darkness. You know the word dissipate?
और भगवान कृष्ण को उनके इस अंधकार को दूर भगाना पड़ा.
भगवत गीता
का संदेश देकर.
The purport is sometimes even a liberated person like Arjuna.
इसका तात्पर्य ये है कि कभी कभी जो मुक्त जीव है जैसे अर्जुन.
Plays a part of a conditioned soul.
वह एक बद्ध जीव की भूमिका निभाते हैं.
In order to play some important part.
एक अहम भूमिका निभाने के लिए.
Similarly, Bhaktivinoda Thakur.
उसी प्रकार से श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर.
For some time associating with the impersonalists.
किसी समय मायावादियों के संग में थे.
And then he exhibited himself in his true color as a pure devotee.
और फिर उन्होंने जो उनका शुद्ध भक्त के रूप में उनकी असली पहचान थी उसको उजागर किया.
Exactly in the same way as Arjuna,
बिल्कुल उसी तरह से अर्जुन के तरह
exhibited himself in the beginning as a conditioned soul,
जिन्होंने शुरुआत में एक बद्ध जीवात्मा की भूमिका निभाई,
and then as a liberated soul,
और फिर वो अपनी वास्तविक जो मुक्त जीव के रूप में प्रकट हुए.
So there is nothing to be misunderstood in this connection.
तो इस संदर्भ में किसी भी चीज को गलत रूप से नहीं समझना चाहिए.
In the early days of youth, Bhaktivinoda Thakur also appeared to be falling under the British propaganda, the British conception of Vaishnavas and all that, and Bhaktivinoda Thakur was seeing this sahaja. So Bhaktivinoda Thakur, in his play acting as a conditioned soul, did not have a high opinion of Vaishnavas.
शुरुआती दिनों में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर भी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का प्रोपेगेंडा था उसके अंतर्गत मायावादियों के साथ संघ कर रहे थे, परंतु इस बात को हमें ठीक रूप से समझना
चाहिए.
उस समय एक प्रमाणिक वैष्णव भी ढूंढना मुमकिन नहीं था, बहुत मुश्किल था.
So for a while he played as if he and wrote as if he were a subscriber to the British conception.
तो ऐसा दिखने में लगता था कि जो ब्रिटिशर्स का सिद्धांत है वो उसको मान रहे हैं.
Shri Bhaktivinoda Thakur, there's no doubt, Prabhupada writes.
There's no. Shri Bhaktivinoda Thakur, Shri Prabhupada लिख रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है.
That he is the eternal energy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu.
कि वे गौरांग महाप्रभु की शाश्वत शक्ति है.
And whatever he did,
जो कुछ भी उन्होंने किया,
was just to suit the time, place, and circumstances.
समय काल परिस्थिति के अनुसार कुछ किया.
There is no contradiction in his activities.
उनके कार्यकलापों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है.
So this letter was written in November of 1968.
ये पत्र नवंबर 1968 में लिखा गया था.
So Thakur Bhaktivinoda, he was born in a family that was not all pure Vaishnavas. His mother was a devotee of Kali, big time.
Srila Bhaktivinoda Thakur का जो जन्म हुआ वह एक ऐसे परिवार में हुआ जिसमें सारे भक्त नहीं थे. उनकी जो माता है वो काली माता
थी. They were very wealthy coming from the side of his grandfather.
और उनके जो दादा की ओर से जो उनका वंशज है बहुत ही
धनिष्ठ
परिवार से थे.
Mother used to spend lakhs on large Kali festivals.
और उनकी जो माता है कली माता के जो उत्सव हैं उसमें लाखों रुपए खर्च करते
थे. There were hundreds and hundreds of guests.
और कई सौ सौ अतिथि आते थे.
Bhaktivinoda Thakur, he was a young boy.
और भक्तिविनोद ठाकुर जब एक नन्हे बालक थे.
So he used to enjoy, you know, these giant festivals.
तो इन बड़े बड़े उत्सवों में
they would have not only instruments, but because of the British era, they would have Western style bands.
क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स के राज्य में तो बड़े बड़े यंत्र तो होते ही थे और ब्रिटिशर्स के स्टाइल का पूरा बैंड होता था.
Like what we see today in Indian weddings.
जैसे कि हम आज के समय में देखते हैं भारतीय शादियों में.
I assure you there were much better musicians than the average Indian. Oom pa pa boom boom doo 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 pa pa. All those big instruments called a tuba with a big brass, you know, big brass. It's rounded and has a big brass. Horn in front, you know, it's called a tuba.
तो निश्चित रूप से उस जमाने में जो वाद्य बजाते थे वो बहुत बेहतर थे आज के समय के तुलना में.
From the British, so it's still a tradition at an Indian wedding that you've got these oom pow pow British style street bands, but they're not very good in comparison with the.
आज हम जो शादियों में बैंड देखते हैं वो कहाँ से आ रहा है? वो ब्रिटिशर्स के जमाने से आ रहा है.
And it would be kettle drums and trumpets, everything, all Western style music, you know.
तो बिल्कुल पाश्चात्य शैली में वो संगीत बजता था.
Because they were wealthy, they would be very lavish.
क्योंकि बहुत ही घनिष्ठ परिवार से था.
But at some point, Thakur Bhaktivinoda, he made friendship with the guard, gate guard.
एक समय उन्होंने चौकीदार से मित्रता की.
Gaikwad was a Vaishnav, a pure
devotee. वो वैष्णव थे, चौकीदार.
And he used to read him shastra.
और वो उनको शास्त्र पढ़कर सुनाते थे.
Ramayan and probably Mahabharata also.
रामायण महाभारत से कथाएं उनको सुनाते थे.
So in one sense you could say that his Bhagavad-Pradaksha guru was the gatekeeper.
एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके जो पद प्रदर्शक गुरु थे वो उनके चौकीदार थे.
Later in life, see they, of course he had two grandfathers.
और उनके दो दादा थे.
Actually, you know, it's no joke. The gatekeeper was like his Bhagavad-Pradaksha guru, introducing him to pure Rama Lila and Krishna Lila.
उनके जो चौकीदार थे और श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पद प्रदर्शक गुरु थे उन्होंने ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उनको राम लीला से कृष्ण लीला से.
One of his grandfathers was also a pure devotee. After he retired from fruit activity, he moved to Orissa. One of his grandfathers moved to Orissa.
तो उनके जो दादाजी थे वो भी एक वैष्णव थे और रिटायर होने के बाद वो उड़ीसा में शिफ्ट हुए.
And he used to chant japa. So he was a Gaudiya Vaishnava, pure Gaudiya Vaishnava.
So Shuddh Gaudiya Vaishnava.
Naturally that had a profound influence of Dr. Bhaktivinoda.
तो उनके ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर के ऊपर उनका बहुत प्रभाव था.
So besides the gatekeeper, another Bhaktivinoda guru would be his grandfather who was a pure Gaudiya Vaishnava devotee.
और चौकीदार के अलावा एक पद प्रदर्शक गुरु उनके दादा भी थे जो शुद्ध भक्त थे.
And he retired actually to, he became sannyasi. This grandfather became a sannyasi.
और उनके दादा ने रिटायर होकर वो वास्तव सन्यासी बने.
Although previously he'd been very wealthy, then he became a sannyasi.
पहले वो बहुत ही रिच थे, बहुत ही धनी थे, फिर उन्होंने सन्यासी
बच्चन everywhere and anywhere sannyasi like our line, not like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and our Prabhupada.
तो उस समय जो सन्यासी थे वो अलग रूप से होते थे, आज के समान नहीं.
Can you open the microphone, please? It's fading.
Hare Krishna.
No. Where is our sound man? Come on. The microphone is fading. Will you raise the volume, please? So, he trained Dr. Bhaktivinoda as a young man in pure Krishna consciousness.
तो उन्होंने उनके दादा ने उनको प्रशिक्षित दिया जब भक्तिविनोद ठाकुर को जब एक वो युवा थे कृष्ण भावनामृत में.
He was also a psychic. His grandpa was also a psychic. This grandfather was also a psychic.
और उनके जो दादा थे उनके पास बहुत सारी मानसिक शक्तियां थी.
And he predicted the exact date on which Dr. Bhaktivinoda would get a really high-paying job as a British in a British government.
और उन्होंने इस बात का prediction भी किया कि वो कौन सी तिथि को भक्तिविनोद ठाकुर को बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी.
The main thing is that he trained him in pure Vaishnav conception.
परंतु मुख्य चीज ये है कि उन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्तिविनोद ठाकुर को प्रशिक्षित किया.
But in the past time that we've already explained that the Nityasiddha devotees in their pastimes play as if they are conditioned souls.
तो जैसे कि हमने समझाया कि जो भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं लीलाओं में इस प्रकार भूमिका निभाते हैं कि जैसे कि वो बद्ध जीव हो.
So later he fell in with bad association.
तो बाद में वह एक बुरी संगति में पड़ गए.
Impersonalists and British philosophers who
Britishers
put down Vedic culture as being primitive, he fell under that influence for some time. Later, although he had been introduced to pure devotional service by his grandfather. So to understand that play acting, that even a Saptavish avatar in play acting can play act as as if he is influenced by bad association. The lesson is there. We've got to take that lesson, even in the life of Dr. Bhaktivinoda.
पाश्चात्य दर्शन मायावादी की संगत के प्रभाव में वो इस प्रकार पड़े तो हमें समझना चाहिए कि वो इस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं प्ले कर रहे हैं
Then Bhaktivinoda Thakur, he had heard about Chaitanya Charitamrita. He knew about Chaitanya Charitamrita.
Shri Bhaktivinoda Thakur ne Chaitanya Charitamrita ke baare mein sun rakha tha.
So he began looking everywhere for a copy of Chaitanya Charitamrita.
Usko padhna chahte the to isliye wo uski ek copy dhoond rahe the.
He couldn't find any. They were not in print.
तो उनको एक भी ऐसी प्रति प्राप्त नहीं हुई.
He spent a very long time, maybe even years, looking for a copy of Chaitanya Charitamrita because he'd heard that it contained the pure teachings of Mahaprabhu.
तो उन्होंने कई समय तक वो उसकी प्रति को ढूंढते रहे क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध दर्शन है इसमें प्रस्तुत है.
After great endeavor, finally he found one copy somewhere, maybe in a
बहुत प्रयास करने के बाद उनको एक प्रति इसकी प्राप्त हुई.
Perhaps in an obscure bookshop. His biography doesn't say exactly where he found it.
तो कहीं से उनको ये चैतन्य चैतरामृत प्राप्त हुई.
When he began Chaitanya Charitamrita reading, then the illusion was dispelled.
तो जब उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ना प्रारंभ किया तब जो उनका भ्रम था वो पूर्ण रूप से खत्म हो गया.
Just as Arjuna's illusion was dispelled by Krishna personally.
जिस प्रकार से अर्जुन का भ्रम दूर हुआ कृष्ण भगवान कृष्ण के संदेश से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे.
Pretend illusion of Dr. Bhaktivinoda was dispelled by reading Chaitanya Charitamrita.
श्री भक्तिविनोद ठाकुर का तथा कथित भ्रम भी दूर हो गया श्री चैतन्य चैतरामृत का अध्ययन करके.
गो हरि
बाल
गो हरि बाल
गो हरि बाल
जय गो हरि बाल
जय गो हरि
बाल जय गो हरि बाल
जय गो हरि बाल.
There's no breakfast today, Prabhus. Translate.
De no mara.
I'm just emphasizing that it's too early to run out of petrol, okay? We haven't even started talking about Gadadhar planet. No, because you people couldn't bear it. You haven't got the ruchi for it. You haven't got a ruchi to listen to 3-hour katha this morning. We could do it, but you haven't got the ruchi for it. Whoever can stay, and those who want to sleep, they can go sleep upstairs. But how it's going to help you? Translate.
तो महाराज कह रहे हैं आज सुबह का प्रसाद नहीं है तो करुणा चंद्रू के निवेदन किया कि महाराज 3 घंटे तक कथा बढ़ सकते हैं तो महाराज कह रहे हैं कि अभी आपकी वो ऐसी रुचि नहीं है तो महाराज कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर कथा करेंगे जो भक्त सोना चाहते हैं ऊपर जाकर सो जाएं जो कथा में बैठना चाहते हैं बैठ जाए.
इन गौरलीला मुकुंद दास अपीयर टू बी अ रॉयल फिजिशियन engaged in government service, but internally he had a deep love for Krishna. So in this way, Bhaktivinoda Thakur is compared to Mukunda Das, who was play acting like a materialistic royal position.
जैसे कि हम गौ लीला में देखते हैं मुकुंद दास जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं वो एक गवर्नमेंट की जॉब कर रहे थे परंतु अंदर से वो भगवान कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण प्रेम से अपलावित थे.
He became the guru. He became the guru for was it Gadadhar? No, I'm forgetting.
Pundarik
Vidyanadi. Yeah. Or was it
Pundarik?
No. Subhishya Chaitanya Prabhu Nidhan Shri Advaita Gadadhar.
Pundarik Vidyanadi was the
Pundarik Vidyanadi was the spiritual. Well, not Mukunda. Okay, I have a mixed. Okay. But Pundarik, that's what I said. Pundarik Vijayanidhi was disguised as a worldly enjoyer.
जिस प्रकार से पुंडरिक विद्यानिधि थे वो इस प्रकार से संसार की दृष्टि में अपने आप को प्रस्तुत करते थे कि जैसे कि वो बहुत ही बड़े इंद्र तृप्ति में लीन भोगी व्यक्ति हो.
So he was so expert, he disguised knowing Mukunda, Vasudev Dutt and Sri Chaitanya Mahaprabhu understood his actual position.
तो वो पूरे संसार में मुकुंद दत्त वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु और कुछ लोगों के अलावा उनकी असली पहचान कोई नहीं जानता था.
गदाधर पंडित वॉज वेरी डियर टू मुकुंद.
गदाधर पंडित मुकुंद को बहुत प्रिय थे.
सो मुकुंद टोल्ड हिम टू कम विद हिम टू बी अ वेरी एग्जॉल्टेड डिवोटी.
तो मुकुंद ने उन्हें निमंत्रण दिया कि आज मैं तुम्हें बहुत महान वैष्णव से मिलाने.
सो गदाधर एग्रीड.
तो गदाधर तुरंत सहमत हो गए.
Surprised to see upon meeting Pundarik Vidyanidhi.
परंतु जब वो पुंडरिक विद्यानिधि से मिले,
that he was living in tremendous opulence.
और उनके महान ऐश्वर्य को उन्होंने देखा.
He beheld him lying on a couch being fanned by servants.
तो वे एक तकिए बहुत मुलायम तकिए के ऊपर बहुत लेटे हुए थे. उनके नौकर उनको चावल डुला रहे थे.
Smeared with perfume.
और इत्र परफ्यूम ये सब लगा हुआ था.
In other words, living in a style of lifestyle of a sense enjoyer.
तो जैसे एक इंद्र तृप्ति में लीन व्यक्ति है उसका जीवन शैली की तरह वो
extravagant prince.
अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे.
So Gadadhar experienced some doubts on seeing all of this.
तो ये सब देखकर गदाधर पंडित के मन में कुछ संशय उत्पन्न हुआ.
Then Mukunda, seeing the doubts of Gadadhar.
तो मुकुंद ने जब इस चीज को देखा कि गदाधर पंडित के मन में संशय है.
He sang some verses about Krishna's merciful treatment of the Putana witch.
दोनों ने भगवान श्रीमद् भागवतम से श्लोक उदित किया किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने पूतना को भी अपनी माता के समान.
She came to kill Krishna.
पूतना भगवान कृष्ण को मारने के लिए आई थी.
Poison smeared breast.
अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर.
But was compassionately given the position of his mother.
परंतु फिर भी कृष्ण की करुणा से उनको माता का दर्जा प्राप्त हुआ आध्यात्मिक जगत में.
Immediately on hearing these shlokas, Pundarik Vidyanidhi underwent a radical transformation.
और जैसे ही पुंडरिक विद्यानिधि ने इन श्लोकों को सुना तो उनमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया.
He began to exhibit all the ecstatic symptoms of love of Godhead.
और भगवत प्रेम के सारे लक्षणों को वो प्रकट करने लगे, उनमें प्रकट होने लगे.
He cried out, "Say more, say more!"
और उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, और कहो, और कहो.
He fell to the floor.
और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गए.
And he began to thrash around in the grip of spiritual emotion.
और अपने कुर्ते को फाड़ने लग गए आध्यात्मिक भावों के कारण.
Breaking all of the room's furnishings.
और उनके आसपास जितनी चीजें थी उसको तोड़ फोड़ने लग गए.
Broken all the furnishings into pieces.
और जितना भी सामान था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए.
In a helpless state of extreme ecstasy.
उनमें इतना भाव था कि उसको संभालने में वो असहाय थे.
Listen carefully.
अब ध्यानपूर्वक सुनिए.
10 men tried to hold him down.
10 लोगों ने उनको संभालने का प्रयास किया.
10 men. I mean, you heard properly. 10 men.
10 लोगों ने मिलकर उनको संभालने का प्रयास किया.
Tried to hold him down.
उनको पकड़ने का.
So that he would not be injured.
कि उनको कोई चोट ना लग जाए.
But it was useless.
परंतु ये सब बेकार था.
Finally, after some time, he recovered.
कुछ समय बाद वो अपने उनको सांत्वना दी.
सो गदाधर देन रियलाइज दैट ही डिसरिस्पेक्टेड द ग्रेट डिवोटी.
तो गदाधर पंडित ने जब भगवत प्रेम के लक्षणों को देखा तो वो समझ गए कि उन्हें महान वैष्णव है.
नॉट लव विद हिज वर्ड्स एंड नॉट फिजिकली बट हिज माइंड ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अपराध.
तो उन्होंने मन में इसका साक्षात्कार किया कि उनसे अपराध हुआ है.
And he commented, "I was heading into a critically dangerous position."
और उन्होंने सोचा कि मैं तो इतने खतरनाक रास्ते पर आगे स्थिति में आगे बढ़ रहा था.
But as you brought me here today,
परंतु आप मेरे को यहां पर लाए हो मुकुंद,
I've been able to avoid that pitfall.
तो मैं इस खड्डे में गिरने से बच गया.
Seeing Pundarik, Sri Pundarik Vidyanidhi dressed as a sense enjoyer,
Pundarik Vidyanidhi, जो एक सामान्य इंद्र तृप्ति में लीन व्यक्ति के वेशभूषा में,
was a materialistic devotee.
मुझे लगा कि तो भौतिकवादी भक्त है.
You were able to understand my mind.
परंतु आप मेरे मन की स्थिति को समझ गए.
And therefore you so kindly caused his devotion to be revealed.
तो इसलिए आपने कृपा पूर्वक इनकी जो भक्ति थी उसको उजागर किया.
As long as I continue, this is Gadadhar speaking.
गदाधर पंडित ने कहा,
As long as I continue to make mistakes,
जब तक मैं ये गलती करता रहूंगा,
you should always please remain watchful in pointing out to me the errors in my thinking.
कृपया आप मुझ पर नजर रखिएगा सावधानी पूर्वक.
All those who take up this path of devotion,
जो कोई भी इस भक्ति के मार्ग को अपनाता है,
accept a spiritual guide,
और आपको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार
कर. I have not as yet accepted anyone as my preceptor.
परंतु मैंने अभी तक किसी भी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया है.
In other words, he had not taken any initiation.
अभी तक उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी.
So I should get myself initiated by this personality.
तो इसलिए मैं इनसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ.
If I can do that, then the fault of whatever contempt I felt will be reduced.
तो अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, तो जितने भी मैंने मन से उनके प्रति अपराध किए हैं, तब शायद क्षमा हो.
This was a very important historical event.
तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लीला.
This is being mentioned in relationship to the life of Thakurbhakti Bhaktur Thakur because a Gadadhar Pandit was role-playing a devotee.
Srila Bhakti Vinod Thakur ke jeevan mein iske sandarbh mein bhi aati hai kyunki jo Gadadhar Pandit hai bhakt ki bhumika nibha rahe the.
He is a member of the Panchatattva.
Halanki wo Panchatattva mein se ek sadasya hai.
Everyone please.
Shri Krishna Chaitanya.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda
again.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda.
So we see that Gadadhar Pandit is the Supreme Personality of Godhead.
तो हम देखते हैं गदाधर पंडित परम पुरुषोत्तम भगवान है.
Actually, is incarnation of Radhika.
और वो राधा रानी के.
So the Lord appears at five pixels. Sri Krishna Chaitanya is Radha and Krishna together.
साथ में बोले श्री कृष्ण चैतन्य जो राधा कृष्ण मिलकर है.
Yes. Sri Krishna Chaitanya.
श्री कृष्ण चैतन्य.
Radha Krishna nahi anya.
Radha Krishna nahi anya.
Radha and Krishna appear together as Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Radha Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu के रूप में प्रकट हुए.
Nityananda Prabhu, of course, is Baladev.
Nityananda Prabhu निश्चित रूप से बलदेव है.
Shri Advaita Acharya is Mahavishnu.
Advaita Acharya Mahavishnu.
Gadadhar is also incarnation of Radhika.
Gadadhar bhi Radharani ke avatar.
So in Gaura Leela,
Radhika
is appearing as Mahaprabhu.
Radhika Mahaprabhu ke roop mein avtarit ho rahe hain.
And she is also appearing as Gadadhar.
Aur wo Gadadhar Pandit ke roop mein bhi avtarit ho rahe hain.
And Shivas is incarnation of Jiva.
Shivas वो जीव तत्व है.
He is the Lord and therefore Chaitanya Charitamrita describes the Lord in five features.
तो श्री चैतन्य चैतन्यमृत में इसकी व्याख्या आती है जिससे भगवान के पांच फीचर्स हैं.
So we have to say something more about Gadadhar Pandit, but everybody is fading away.
तो हम गदाधर पंडित के बारे में और कहना चाहते हैं परंतु आप सब नीचे गिर रहे हैं.
So who will lead a kirtan for a while, then we'll say more about Gadadhar.
तो कौन आप में से कौन कीर्तन लीड करना चाहेंगे?
All right, sing. There should be a stand-up kirtan because everybody's fading away. There's no breakfast today. Very sorry.
तो आज कोई ब्रेकफास्ट नहीं है और इसलिए हम खड़े होकर नाच करेंगे.